ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नया वर्ष 2083 आज मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का मस्यौदा सार्वजनिक बैसाख 10 गते के भीतर सुझाव देने का राजनीतिक दलों से किया आग्रह। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड का निर्माण निर्धारित समय पर संपन्न करने का गृहमंत्री सुदन गुरुंग का निर्देशन। और ईरान के बंदरगाह के आसपास अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी प्रति चीन ने जताई कड़ी आपत्ति। अब समाचार विस्तार से। आज से विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हुई है। नए वर्ष को उत्साह, नई उमंग और नए शुरुआत के रूप में भी लिया जाता है। आज बैसाख एक वर्ष का पहला दिन पूरे देश में एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में नए वर्ष को विशेष पर्व के रूप में मनाने की परंपरा है। नेपाल में भी बैसाख एक को नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सबसे प्राचीन संवतों में से एक विक्रम संवत है और आज उसी संवत का पहला दिन है। आज के दिन सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करता है, जिसे बैसाख संक्रांति या मेष संक्रांति कहा जाता है। सूर्य की गति के अनुसार चलने के कारण विक्रम संवत को शाश्वत माना जाता है। विद्वानों के अनुसार सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करने और मीन राशि को छोड़ने के साथ पुराना वर्ष समाप्त होकर नया वर्ष शुरू होता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक आधार वाला भी माना जाता है। इस दिन लोग बीते वर्ष के कार्यों की सफलता और असफलता का मूल्यांकन करते हैं। असफलताओं को दोहराने से बचने और सफलता प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं बनाने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि नए वर्ष हमारे लिए देश का साझा राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने और उसे प्राप्त करने का संकल्प लेने का दिन है। नए वर्ष 2083 के अवसर पर सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य अपने आप प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे हासिल करने के लिए संकल्प और साधना आवश्यक होती है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विधि और व्यवस्था को आत्मसात करने के साथ साथ संस्कारित व्यवहार और आचरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसी तरह प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी नए साल 2083 के अवसर पर शुभकामना व्यक्त किया है। आज सामाजिक संजाल फेसबुक के जरिए संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री शाह ने सर्वे भवन्तु सुखिन मंत्र उद्धृत करते हुए सभी के जीवन में सुख, आरोग्य और कल्याण होने की कामना की। नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का मसौदा तैयार कर सार्वजनिक किया है। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र और चुनाव के समय जारी किए गए वचन पत्रों के अध्ययन के आधार पर सरकार ने यह 18 बिंदुओं वाला राष्ट्रीय प्रतिबद्धता दस्तावेज तैयार किया है। इसे सुझाव और राय के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय की वेबसाइट पर रखा गया है। इस मसौदे पर संबंधित राजनीतिक दलों से आगामी बैसाख 10 तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार ने चैत 13 को पहली मंत्रिपरिषद बैठक से शासकीय सुधार संबंधी 100 बिंदुओं का कार्यसूची भी सार्वजनिक किया था। उसी कार्यसूची के बिंदु संख्या 3 के प्रावधान के अनुसार यह राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मसौदा सार्वजनिक किया गया है। सरकार ने इस राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अधीन एक सरकारी संरचना बनाने का भी उल्लेख किया है। इस प्रतिबद्धता में मुख्य प्राथमिकता के क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता और सुधार, कृषि पेशे का सम्मान और आत्मनिर्भरता, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा विकास और उपयोग, खनन तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन शामिल है। इसी प्रकार इसमें सुशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण, प्रशासनिक सुधार और सेवा प्रवाह, ई गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी सामाजिक न्याय और समावेशन, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश संबंध, नेपाली डायस्पोरा के ज्ञान कौशल और पूंजी का उपयोग, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, सहकारी और लघु वित्त जैसे विषय भी शामिल किए गए हैं। गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान गृह मंत्री गुरुंग ने संबंधित निकायों और ठेकेदार कंपनी को निर्धारित समय में कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार्य नहीं होगी। इस प्रकार काम में देरी को लेकर उन्होंने चीनी ठेकेदार कंपनी का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्य को तेजी से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि समय पर निर्माण पूरा न होने से यात्रियों को कठिनाई हो रही है, दैनिक आवागमन प्रभावित हो रहा है और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ गया है। उन्होंने इस स्थिति का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों ने अगले 15 दिनों के भीतर सड़क निर्माण पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 152वीं महासभा में भाग लेने के लिए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए आज तुर्की के इस्तांबुल के लिए प्रस्थान किए हैं। बैसाख 2 से 6 गते तक इस्तांबुल में आयोजित होने वाली इस महासभा में अध्यक्ष दहाल भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति और न्याय सुनिश्चित करना विषय पर संबोधन देंगे, ऐसा संघीय संसद सचिवालय ने बताया है। इस यात्रा के दौरान वे विभिन्न देशों की संसदों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अंतर संसदीय संघ की स्थायी समिति के कार्यक्रमों में नेपाली प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद भी भाग लेंगे, यह जानकारी संसद सचिवालय के प्रवक्ता एकराम गिरी ने दी। नेपाली कांग्रेस ने सक्रिय सदस्यता को अद्यावधि करने के लिए जरा अभियान आज से शुरू किया है। पार्टी के सभापति गगन कुमार थापा ने काठमांडू महानगरपालिका 30 में अपनी सदस्यता का नवीकरण करते हुए इस अभियान का शुभारंभ किया। अभियान की शुरुआत करते हुए सभापति थापा ने कहा कि जो लोग सक्षम है वे इस अभियान में सहयोग करें और जो सक्षम नहीं है वे कम से कम असहयोग ना करे। मध्य प्रदेश में नए वर्ष 2083 के पहले दिन पारंपरिक रूप से सतुआइन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विशेष रूप से तराई मधेश के जिलों में यह पर्व सुबह से ही धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाने की परंपरा है। सतुआइन पर्व के अवसर पर चना, गेहूं या जौ से बने सत्तू, दही, चीनी, गुड़, खीरा जैसे ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। गर्मी के मौसम की शुरुआत में शरीर को ठंडक देने के उद्देश्य से यह पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सतुआइन पर्व स्वास्थ्य, समृद्धि और दीर्घायु की कामना से जुड़ा हुआ है। इस दिन परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर पारंपरिक भोजन करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के बंदरगाहों के आसपास अमेरिका द्वारा लागू की गई नाकाबंदी पर चीन ने कड़ी असंतुष्टि जताई है। चीन ने इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ेगा तथा नाजुक युद्ध विराम कमजोर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने या वहां से निकलने वाले जहाजों पर सख्त सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने के बाद बीजिंग ने यह प्रतिक्रिया दी है। विशेष रूप से ऐसे जहाजों को डुबोने तक की चेतावनी दिए जाने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गया है। शांति वार्ता सप्ताहांत में निष्कर्षहीन रहने के बाद ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी क्षेत्र में ईरानी बंदरगाहों और तटीय मार्गों पर आने जाने वाले जहाजों को रोकने का निर्णय लिया था। अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति होने के बावजूद सोमवार यह नाकाबंदी लागू हो गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नया वर्ष 2083 आज मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का मसौदा सार्वजनिक बैसाख 10 गते के भीतर सुझाव देने का राजनीतिक दलों से किया आग्रह। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड का निर्माण निर्धारित समय पर संपन्न करने का गृहमंत्री सुदन गुरुंग का निर्देशन। और इराक के बंदरगाह के आसपास अमेरिका द्वारा लगाए गए नाकाबंदी प्रति चीन ने जताई कड़ी आपत्ति। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।